ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஐத்ரேய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்ய சைத்தன்யஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பரபிரம்மா பரமேஸ்வர் சிருஷ்டிகே கண கணமே வியாப் சுக்கே அந்தர் अंतर्यामी रूप से विराजमान, उसी की ही प्रेरणा से जो मानव का लक्ष्य है, किस प्रकार हम उस तत्व को जान सकते हैं और ये जो दुख है उसको किस प्रकार निवृत्त कर सकते हैं, इसलिए हम लोग विचार कर रहे थे ऐतरीय उपनिषद के ऊपर. ये जो ऐतरीय उपनिषद प्रारंभ हो रहे क्यों, पहले दिन ही मैंने कहा दिया था, कोई ना कोई प्रयोजन को लेकर ही प्रवृत्त हो रहे. मुख्य कारण ये है, आत्मा सुख स्वरूप होने पर भी, आनंद स्वरूप होने पर भी, सच्चित स्वरूप होने पर भी दुख का अनुभव कर रहे हैं. ये दुख आया कहां से, इसलिए हम विचार कर रहे थे. अंतिम में विचार करते करते ये हमारे सामने आया, अविद्या के कारण ही दुख है, अविद्या के द्वारा अविवेक उत्पन्न होता है, अविवेक के कारण व्यक्ति अभिमान करता है, अभिमान के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और राग द्वेष के कारण ही कर्म करता है, उसी कर्म के फल स्वरूप ये शरीर प्राप्त हो रहे हैं और उस शरीर के साथ परिग्रह हो रहे, तादात्म्य हो रहे आत्मा का, बस यही दुख का खेल है. तो अंतिम में जो है मूल कारण है दुख का, माया है, अविद्या है. अविद्या क्या है ये भी हम लोगों ने विचार किया था. ऋग्वेद में बता दिया है, जो अविद्या है उसके चार फंदे माने हैं, माया के चार फंदे हैं. जैसा किसी को फंसाने के लिए कोई शिकारी है फंदा डालता है, वैसे ही जो माया है इस आत्मा को फंसाती है और फंसाकर उसको जीव बना दिया. केवल जीव बना दिया नहीं, यहां तक नीचे लाता है, जन्म मृत्यु तक. ऋग्वेद में स्पष्ट बता दिया है, चार फंदे हैं. इसलिए फंदे का नाम संस्कृत में कहते हैं कपर्धा. कपर्धा का मतलब फंदा. तो वहां स्पष्ट कहा चतुष्कपर्धा, चार कपर्दे वाले हैं, चार फंदे वाली है माया. कौन कौन है? युवती सुपेश घृत प्रतीका वयुनानि वाष्टे. ऋग्वेद में बता दिए चार फंदे. सबसे पहला जो फंदा है युवती. माया सदा जवान रहती है, बूढ़ी नहीं होती है, कभी नहीं होती है. माया की एक बेटी भी माना है तृष्णा, उस माया की बेटी है. दोनों जवान रहती है, मां भी जवान बेटी भी जवान. और वो जो माया देवी है वो तृष्णा रूप बेटी को उस आत्मा के साथ विवाह करती है और उसको बूढ़ा बना देते हैं. अर्थात मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये बना दिया। किंतु माया और तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है। भर्तृहरि ने कहा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं हुई, अभी तक किसी की नहीं हुई, कोई तत्ववित साधक महापुरुष की, और किसी की तृष्णा जीर्ण नहीं हो। वांट्स आर अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं उसकी। तो इसलिए जो माया है सदा तरुणी रहती है, युवती, ये युवती रहकर सबको मोहित करती है और इस आत्मा को फंसाती है, दुखी बना देती है। इसलिए ये माया का जो पहला फंदा है युवती माना है ऋग्वेद में, और दूसरा उसका फंदा है सुपेशा। सुपेशा कहते चालाकी, चपलता, बहुत चालाकी है माया। इतनी चालाकी है जिससे उसका विवाह हुआ, विवाह मतलब संबंध आत्मा से, व्यापक जो आत्मा है उसको परिचिन्न बना दिया, अजन्म जो आत्मा है उसको जन्म बना दिया, जो अमर है अजर आत्मा है उसको मरने वाला बना दिया। इस चालाकी ने तो और क्या है, यही चालाकी है। तभी हम बोलते अरे मैं मरने वाला हूं, मेरा जन्म हुआ है, मैं कुछ नहीं जानता। ये कौन कर रहे, सारा माया कर रहे अपने दूसरे फंदे के द्वारा। इसलिए माया का दूसरा फंदा है सुपेशा कहते हैं। तीसरा जो फंदा है माया का, घृत प्रतीका। घृत मतलब घी, घी के समान है। पहले घी अच्छा लगता है, यदि घी खाए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बाद में डॉक्टर मना करेंगे। वैसे ही माया पहले बहुत अच्छी लगती है, देखने के लिए बहुत सुंदर, माया मतलब माया का कार्य, बहुत अच्छा लगता है। और जैसा जैसा आप अंदर प्रवेश करेंगे, उस जंजाल से आपको बाहर आने नहीं देगा, चक्रव्यूह बना देता है। जैसा चक्रव्यूह के द्वारा अभिमन्यु को फंसा दिया, वैसे ही जो माया है पहले आत्मा के शरण में जाती है, मुझे थोड़ा आश्रय दे दो करके, उसके बाद उस माया आत्मा को ही अपना चुंगुल में फंसा देती है, बाहर निकलने के रास्ता ही नहीं देती है। आत्मा ने उसको आश्रय दिया, उसी आत्मा को ऐसा घुमा देती है, नचाती है। इसलिए वो घृत प्रतीका, घी के समान है, पहले अच्छी लगती है, बाद में वो भयंकर बवंडर बचा देती है। ये तीसरा फंदा माना है। तीसरे फंदा के द्वारा इन जीवों को दुख दे रहे आत्मा को। चौथा फंदा माना है वयुनानी वस्ते। वयुनानी कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान का नाम है वयुनानी कहते। उस ज्ञान को वस्ते मतलब ढक देता है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम स्तुति बोल रही है। ऐसे जो ज्ञान स्वरूप आत्मा को भी ये ढक रही। गीता में भी देखे भगवान बोल रहे अज्ञानेनावृत अज्ञानम। तो चौथा जो फंदा है वयुनानी वस्ते, उसके द्वारा ये ज्ञान को ढक रहे। ज्ञानी आत्मा को अज्ञानी बना दिया। इसलिए हरेक व्यक्ति कहते मैं अज्ञानी हूं महाराज, मुझे कोई पता नहीं ये अज्ञान आया कहां से। तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान का भंडार हो, किंतु ये माया ने ऐसा बना दिया, तेरा ज्ञान को ढक दिया। इसलिए इन चार फंदों के द्वारा युवती सुपेशलः घृतक प्रतीक वोयुनानी वास्ते, इस चार फंदों के द्वारा उस आत्मा को फंसाकर जीव बना दिया और दुखी बना दिया। ये जो दुख निवृत्त करने के लिए ही शास्त्र है, शास्त्र के द्वारा ही हम ये विचार के द्वारा ही दुख की निवृत्ति कर सकते हैं और कोई मार्ग नहीं, क्योंकि अज्ञान और अविवेक के कारण ये दुख आ रहा है। उसके लिए ज्ञान ही हटा सकता है। वो जो ज्ञान है शास्त्रीय ज्ञान है, औपनिषद ज्ञान अथवा स्मार्त ज्ञान। स्मार्त का मतलब स्मृति प्रतिपाद्य ज्ञान, गीता है स्मृति और उपनिषद है श्रुति। तो श्रुति और स्मृति में थोड़ा अंतर है। श्रूयते इति श्रुति, गुरु के द्वारा जो शिष्य सुनते सुनते जो आ रहे उसको कहते श्रुति ज्ञान। और श्रुति के अनुसार कोई यदि महापुरुष स्मरण करता है उसको स्मृति कहते हैं। भगवान ने कोई अलग उपदेश नहीं किया गीता में, जो शास्त्र में वेद में बताया हुआ जो अर्थ है अपने शब्दों के द्वारा स्मरण किया। गीता में भी देखे भगवान स्पष्ट बता रहे मेरा वचन को विश्वास मत करो, तस्मा शास्त्र प्रमाणम च। मेरा वचन प्रमाण नहीं बोल रहे भगवान, स्वयं बोल रहे शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र कौन है? यही जो श्रुति है मुख्य रूप से। यदि श्रुति प्रमाण है उस श्रुति के अनुसार आप बोल रहे वो भी प्रमाण माना जाता है। अतः ये दुख का कारण जो माया है अविद्या है, चार फंदों के द्वारा इसको फंसा रहे, उसको हटाने के लिए उपनिषद के ऊपर हम विचार करें। ये जो हम विचार कर रहे उपनिषद ऋग्वेदिया है, चार वेद है ना, यद्यपि वेद चार नहीं एक ही है। वेद किसको कहते हैं? हम लोग वेद सुनते समय एक पुस्तक का भंडारा पुस्तक मानते नहीं। वेद शब्द ही बना है विद ज्ञाने धातु से, अर्थात जिसमें सारा ज्ञान उड़ेल लिया है वही वेद है। वेद कोई एक पोती नहीं है, बाद में उसको पोती रूप से लाया। जैसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं सबसे पुराना कोई यदि ग्रंथ है वेद मानते हैं 5,500, और वो तो पोती रूप से मान रहे। वो हमारा जो वेद है अनादि है, अपौरुषेय है, किसी ने बनाया नहीं। ज्ञान को बनाया नहीं जाता है, जो बनाया है वो बिगड़ भी जाता है। इसलिए जो जिसमें ज्ञान है उसी का नाम है वेद, क्योंकि व्याकरण के अनुसार विद ज्ञान धातु से ही बना है वेद। उसमें मुख्य रूप से तीन ज्ञान का उड़ेल दिया है इसमें। तो सबसे पहले वहां कर्म का ज्ञान बता दिया, तो कर्म का ज्ञान बताने से उसको कर्म कांड नाम रख दिया अथवा उसको कर्म योग भी कहा दिया। दूसरा ज्ञान वेद में ये बता दिया, उपासना ज्ञान बता दिया। उपासना ज्ञान बताने के कारण उस वेद को उपासना कांड कहा दिया। और तीसरा जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान है, स्वरूप ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। एक ही अर्थ है, शब्द अलग है, अर्थ अलग नहीं। उस ब्रह्म ज्ञान कहो अथवा आत्म ज्ञान है उसको बता रहे, इसलिए उसको ज्ञान कांड कहा गया। तो तीन ज्ञान मुख्य रूप से वेद में है, इसलिए जो ज्ञानों का भंडार है वेद है। उसमें भी जो कर्म को बताने वाला जो ज्ञान है मंत्र है 80,000 मानते हैं, और उपासना ज्ञान को बताने वाले मंत्र है 16,000 मानते हैं, और आत्मज्ञान को बताने वाले मंत्र है 4,000 मानते हैं। तो सारे मिलाकर 1,00,000 मानते हैं, किंतु फिलहाल मैंने गिना 1,00,000 उपलब्ध नहीं, 50,000 से ऊपर थोड़े कुछ मिलते लुप्त हुए हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि कुंठित हो गई, ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं, और बहिर्मुख हम लोग अधिक होने से जैसा जैसा हम बहिर्मुख होते जाते हैं वैसा वैसा वो भी भूल जाते, अनुभव भी हो रहे हैं। तो इसलिए कर्म कांड को बताने वाले 80,000 मंत्र, उपासना को बताने वाले 16,000 मंत्र, दोनों मिलाकर 80 और 16 96 मानते। इसलिए जो ब्रह्मचार्य को यज्ञोपवीत करते हैं, उपकर्म करते हैं, वो यज्ञोपवीत भी 96 अंगुल का मानते हैं। किंतु आजकल कोई नियम नहीं है, पहले तो यज्ञोपवीत धारण ही नहीं करते, ये अलग बात है, किंतु 96 है, अर्थात तुम 96,000 मंत्र के अधिकारी हो, तुझे लाइसेंस दिया है, उसके बिना यदि तुम करते हो तस्कर मानेंगे। उसके बाद जो 4,000 मंत्र है, ये सारे दुखों के निवृत्ति का कारण है, आत्मा को बता रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ऋग्वेदीय ऐतरीय उपनिषद के ऊपर विचार करेंगे। अभी जो ऐतरीय उपनिषद ये नाम क्यों पड़ा, जैसा कटुपनिषद है ईशावास्य है नाम है, ईशावास्य इसलिए पहले ईशावास्य मिदम से प्रारंभ हुआ इसलिए ईशावास्य कहा दिया। कट शाक के होने के कारण उसको कटुपनिषद कहा दिया, और यहां ऐतरीय उपनिषद नाम क्यों पड़ा। ऋग्वेद है उसमें एक ऐतरीय ब्राह्मण है और एक कौशितकी ब्राह्मण है। वेद में भी एक मंत्र भाग होता है, एक ब्राह्मण भाग होता है, तो ऋग्वेद में एक ऐतरीय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, उनमें ऐतरीय ब्राह्मण में 40 अध्याय माना जाता है, 40 आरण्यक। उसमें भी जो द्वितीय आरण्यक है उसके 4वां, 5वां और 6वां द्वितीय आरण्यक का, उसको यहां ऐतरीय उपनिषद कहा दिया है। ऋग्वेदिया जो द्वितीय आरण्यक है उसके अंदर 3रा, 4वां, 5वां, 6वां इसको उपनिषद कहा दिया है। अभी जो ऐतरीय आरण्यक नाम क्यों पड़ा उसका, एक ऋषि थे बहुत बड़े तपस्वी विद्वान, उस ऋषि के अनेक पत्नियां थी, उसमें एक इतरा नाम की एक पत्नी थी उनकी, उस पत्नी का नाम था इतरा, उस इतरा नाम का पत्नी का एक पुत्र था महीदास। वो जो ऋषि है अपने जो अन्य जो पत्नी है उनके पुत्रों से ज्यादा प्रेम करता था, और इतरा का जो पुत्र महीदास था उससे इतना प्रेम नहीं करता, थोड़ा उपेक्षा दृष्टि रहता था। मां तो मां ही होती है, पहले भी बताया था, किंतु जो मां इतरा है उनके मन में बहुत खेद हो गया। ये जो मेरा पतिदेव अन्य सब जितने भी है बच्चों से प्रेम कर रहे, मेरा पुत्र महिराज से क्यों नहीं कर रहे, कारण क्या है? बहुत खिन्न हो गई, दुखी हो गई। उनका जो कुल देवता था भूमि देवता भूदेवी, उन्होंने भूदेवी का चिंतन किया, ध्यान किया दुखपूर्वक, उतने में भूदेवी प्रकट हो गई। भूदेवी प्रकट होकर इतरा का जो पुत्र था महीदास उसको यज्ञ मंडप में स्थापित किया, बिठा दिया, और उसके बाद भूदेवी ने उसको आशीर्वाद दिया, पुत्र तुम ऐसा विद्वान हो, सारा वेद तेरा अंदर आ जाएगा। और इतरा को कहा दिया, तूने मेरी उपासना की है इसलिए ये 40 जो अरण्यक है तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। तो इतरा के द्वारा प्राप्त होने से उसका नाम ऐतरीय नाम पड़ गया, जैसा वसुदेव का पुत्र को कहते वासुदेव। तो इतरा नाम की जो ऋषि की पत्नी, उसके निमित्त से ये उपनिषद प्रकट होने से उस उपनिषद का नाम ऐतरीय नाम पड़ा है। ये ऐतरीय उपनिषद शदर्लीगत धातु से बनता है, उसका तीन अर्थ है। और उपा नि उपसर्ग है, समीप में निरंतर ले जाता है, किसके समीप में? संसार के नहीं, संसार का जो मालिक है, संसार का जो कर्ता है, संसार का जो दृष्टा है, संसार का जो भर्ता है, संसार का जो प्रकाशक है, उसके ओर ले जाता है, इसलिए उसका नाम उपनिषद। अथवा दूसरा अर्थ है अवसादन, अवसादन का मतलब शिथिल करना। हम बार बार गर्भवास में जा रहे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जटरे शयनम, ये बार बार जो गर्भवास आदि को निवृत्त करता है और दुख आदि को नष्ट करता है और परमात्मा के ओर ले जाने से उसके नाम है उपनिषद। उपनिषद का भी दो अर्थ है, उपनिषद का अर्थ है विद्या, विद्या भी दो है, परा और अपरा। परा विद्या को भी उपनिषद कहते हैं, अपरा को भी कहते हैं। संक्षेप से यदि कहना हो उपनिषद का मतलब गोपनीय विद्या, रहस्यमय विद्या, इसी का नाम है उपनिषद, जो रहस्यमय है गोपनीय। तो रहस्यमय कौन है? परमात्मा ही सबसे बड़ा रहस्य है, सर्वत्र प्रकट होने पर भी वो रहस्य में पड़ा है, सर्वत्र होने पर भी वो गोपनीय भी हो गया। है तो सर्वत्र किंतु ढक गया, इसलिए गोपनीय हो गया। तो इसलिए रहस्यमय विद्या अथवा गोपनीय विद्या होने से उसको उपनिषद कहा दिया। और वो जो विद्या यदि अपरब्रह्म को बता रहे हैं, यदि ये परमात्मा तो एक है दो नहीं है पहले निश्चय कर दीजिए, किंतु शास्त्र और महापुरुष इतना प्रयास कर रहे हैं इस जिज्ञासुओं को किसी ना किसी प्रकार से यहां से पार करवा भी, इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के समझाने के लिए ये बता रहे हैं। क्योंकि जो नीचे तर का व्यक्ति है उसको एकाएक आप ऊपर नहीं ले जा सकते, उसको धीरे 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 लेके जाना पड़ेगा, अन्यथा ऊपर जाते वो पिसल जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए शास्त्र और महापुरुष धीरे धीरे ले जाते हैं। एक ही परमात्मा होने पर भी उसको तीन भाग में विभक्त किया है। सबसे मुख्य है निर्गुण निराकार है, वो निर्गुण भी है निराकार भी। निर्गुण बोल तो कोई गुण नहीं है, सारे गुणों से रहित है, आकार भी नहीं है, वो निर्गुण निराकार तत्व एक ही है।